शांति। सभी कुशल मंगल, प्रसन्न कि तन और मन दोनों शीतल चाहिए। कुछ भी ग्रहण करना है तो मन भी शीतल चाहिए ना, और तन भी चाहिए। इस अरावली पहाड़ियों पर बहुत सुंदर वातावरण है, किसी का आवाज भी नहीं है, किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन का अपना चिंतन अलग होता है। मन अगर जब निश्चिंत हो जाता है, कोई चिंता ही नहीं है, शांत, तो साधना के लिए इसलिए पहाड़ों पर जाके क्यों बैठते हैं? कहीं भी साधना कर सकता है? नहीं, वातावरण चाहिए। तो इसके लिए साधना का लक्ष्य कल बता रहे थे हम, तो रह गया था थोड़ा सा कि साधना का लक्ष्य और साधना की प्राप्ति क्या है, साधना क्यों करनी चाहिए, साधना किस विधि से करना चाहिए और उसकी प्राप्ति क्या है, क्यों शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सके। तो साधना क्यों करना चाहिए, साधना का लक्ष्य क्या है? बच्चा स्कूल में जाता है, जरूर रोज जाता है, लेकिन परीक्षा में पास होना चाहिए। स्कूल में जाके क्या किया? खेलने गया और कुछ किया? पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो ये साधना भी किसके लिए हमको साधना करना चाहिए? उदाहरण, जैसे शरीर बीमार है तो डॉक्टर चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। डॉक्टर्स आर नॉट फॉर ऑल, डॉक्टर सभी के लिए नहीं। जब तक मैं महसूस नहीं करता मैं बीमार हूं तब तक डॉक्टर की जरूरत नहीं है, है ना। कितने डॉक्टर घर में भी है, दवाई भी है, लेकिन उसके तरफ ध्यान ही नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है। तो यहां भी आया साधना किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, फिर उसकी विधि क्या है, उसके द्वारा प्राप्ति क्या है, ये सब चाहिए। जैसे बीमारी पता चला, दवाई चाहिए। आप देख लो सिरदर्द के, सिरदर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर में जाओ सिरदर्द की दवाई मिलेंगे आपको, लेकिन आप उसको ले नहीं सकते हो। उसके ऊपर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को पूछ के लेना। क्यों पूछना चाहिए? सिरदर्द है, हां इसलिए पूछना चाहिए कि सिरदर्द चार प्रकार से होता है। माइग्रेन के कारण हो रहा है, कोई बीमारी नहीं, आंखों का नंबर चेंज हो गया है, दवाई लेने की जरूरत नहीं, चश्मे का नंबर चेंज करो, है ना। कि ये हमको सिरदर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, पित्त का क्या कारण हो रहा है, किसी को कफ के कारण हो रहा है, कोल्ड के कारण हो रहा है, तो ये सब डॉक्टर डायग्नोज करता है, देखता है, फिर कहता है ये गोली आपको नहीं चाहिए, आप चश्मे का नंबर चेंज करो। तो यहां भी साधना हमें क्यों करनी चाहिए? शरीर की व्याधि के लिए शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, पांच तत्वों के अंदर अगर कुछ हुआ तो उसके लिए फिजिशियन कहा, डॉक्टर वैद्य है, तो वैद्य दवाई देता है शरीर को। पांच तत्वों के अंदर कुछ वात कफ पित्त के अंदर कुछ इंबैलेंस हुआ, आयुर्वेदिक के अनुसार, एलोपैथी के अनुसार भी कहेगा, तो वो शरीर के हर नसों का ज्ञान जानता है, उसको कहते हैं फिजिशियन, शरीर के हर नसों का है। अगर कुछ है दवाई देता है, ये ले लो ये ले लो, शरीर के लिए। लेकिन यहां आया दो शक्तियां है, एक भौतिक शरीर और एक आध्यात्मिक शक्ति आत्मा। अगर आत्मा के अंदर कुछ बीमारी आ जाए, दर्द आया दुख आया, तो कौन ठीक करेगा? डॉक्टर ठीक करेगा? तो प्रश्न आया, तो शरीर आत्मा की अगर व्याधि है उसको कौन ठीक कर रहा है? तब और एक डॉक्टर है, उसको कहा सुप्रीम सर्जन। उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, शरीर को नहीं। स्पष्ट शब्दों में है, मैं किसके लिए क्या करता हूं, मैं किसका डॉक्टर हूं। जैसे हार्ट का डॉक्टर अलग है, कान के डॉक्टर को जाके बोलो मेरे हार्ट का ऑपरेशन करो, नहीं, वो अलग है। लक्ष्मी के पास जाकर के विद्या मांगो, नहीं, लक्ष्मी की धन की देवी विद्या देवी अलग है। तो यहां भी डॉक्टर्स भी अलग अलग है। तो आध्यात्मिक रास्ते पर भी अलग अलग प्रकार की साधना है, हरेक का लक्ष्य के अनुसार। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा मुख्य लक्ष्य है कि पतित आत्मा को पावन करना है और प्रकृति आत्मा को चाहिए, प्रकृति के बिगड़ आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। तो आत्मा अगर पावन है तो उसके आचरण से, उसके शक्ति से, साधना से वो प्रकृति को भी पावन करता है। प्रकृति और आत्मा, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों चाहिए, तब जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, निर्मल काया, निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से भरपूर, ये कैसे होगा? उसका नाम, जहां ये तीनों प्राप्तियां है उसका नाम स्वर्ग, जहां ये तीनों प्राप्तियां नहीं है उसका नाम है नरक। नरक और स्वर्ग में अंतर जानना चाहिए। किसको कहे कि जहां इन तीनों में इंबैलेंस है, किसी को सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, किसके पास धन इतना है घर में खाने वाले कोई नहीं है, किसके पास खाने वाले घर में इतने बच्चे हैं लेकिन धन नहीं है, इन तीनों में इंबैलेंस है, तो क्या भगवान आकर के किसी को धन, किसी के बीमार है तो दवाई देगा? प्रश्न यहां आया। तो तब का भगवान कौन? और एक नाम है, वो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो क्या विधि बताता है? अगर दुनिया में भी आज भी, आज तक भी अगर आपको गेहूं चाहिए, एक बीज बोलो, एक का 50-100 गुना आज भी मिलता है, ये धरती देती है। भगवान ने विधि बताया। तो यहां भी एक विधि है, अगर पतित आत्मा है, पाप मिटाना चाहती, मतलब पाप कटेश्वर कहा, कौन है वो? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ने विष पिया है। कौन सा विष? ये पांच विकार मनुष्य को दुख दे। कोई भी व्यक्ति देखो क्रोध करना चाहता है, चाहे छोटा बच्चे से बड़ा तक, न चाहते हुए कहां से आ रहा है ये? तो उसके ऊपर विजय कैसे? तो इस विष को कौन लेगा? तब परमपिता परमात्मा, उनका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, वो आता है। वो आकर के इस धरा पर कैसे आएगा? भगवान निराकार है तो उनको माध्यम चाहिए। तो माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, जिसको सारा ब्रह्मांड का ज्ञान दिया उसका नाम है ब्रह्मा, उन्हीं के द्वारा पालना करता है। विष्णु पालना, सदा विष्णु खड़ा है, देखो बैठता नहीं है। फिर जब यह झाड़ बड़ा हो गया, वृद्धि को पाया, शंकर अपने शक्ति द्वारा इसका परिवर्तन करता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों को शक्ति देने वाला कौन? शिव, त्रिमूर्ति दे शिव, इन तीनों ये मैनेजर्स सृष्टि के। तो करने वाला एक परमपिता परमात्मा इनके द्वारा इस सृष्टि का कैसे परिवर्तन करता है, कैसे स्थापना करता है, कैसे पालना करता है। सब भारत एक ही देश है, भगवान को गॉड फादर इतना नहीं कहते। भारत में त्वमेव माताश्च पिता त्वे, मां बाप है, सिर्फ बाप नहीं है, भगवान दोनों, अकेला नहीं है, मां बाप के द्वारा दोनों है, पालना भी करता है। तो कैसे करता है? तब प्रश्न आया, तो नंबर वन यहां राजयोग है और नंबर वन पवित्रता भी है। तो फिर नाम दिया सहज राजयोग, कुछ नहीं करना है, कोई साधन बहुत कुछ नहीं। मां बाप, अगर बच्चा आता है स्कूल से, मां मुझे भूख लगी, बच्चा ठहरो एक मिनट में खाना बना के देती हूं, लेकिन खाना बनाने के लिए एक घंटा लगेगा। यहां भगवान मां बाप भी बच्चों को ये करो ये करो ये करो नहीं, मां पिता है, बच्चों को जितना सहज साधन सुख देना चाहता है वो सहज विधि बताता है, इसलिए नाम रखा है सहज राजयोग। तो सहज क्या है? कुछ नहीं करना, अपना कर्म के, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, गृहस्थ में रहो, कर्म करो सवेरे से रात तक, सवेरे से रात तक संसार में चलो, हरेक को देखो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का एक परिवार है। तो परिवार के अंदर मां बाप है, भाई बहने हैं, तो किसी पर दृष्टि गई ये कौन? हां, परमपिता परमात्मा का संतान है, ईश्वर का संतान है। ये समझ दृष्टि में देते ही ये शरीर आज है कल छोड़ेगा, किसने कपड़े काले पहने, किसने पीले पहने, किसने सफेद पहना, ये वस्त्र है। ये समझ नहीं है, समझ चाहिए। तब कहा रूहानी दृष्टि, ये कौन इस शरीर में कौन? देखो किसी बच्चों को भी बताओ, इस शरीर में कौन है, ये शरीर कौन सा और ये शरीर कौन सा? शरीर वही है? नहीं, ये मुर्दा है और ये शरीर है, ये जीवित शरीर है, ये जीवित शरीर नहीं है। तो हमें पता ये जीवित शरीर इसके अंदर कौन है? हां, आत्मा परमात्मा का संतान बैठा हुआ। ये स्मृति आई, कोई भी अधम ते अधम महापापी भी हो, उसका धर्म कर्म है। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है? किसी पर देखते ही भगवान शुभ बाबा बाप है हमारा, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, शुभ सोचो। कहते हम जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो कैसे सोचो, कोई कैसा भी हो, तो ये अगर आपके मन में किसी पर दृष्टि जाते ही अगर ये विचार, श्रेष्ठ विचार आया, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन पवित्रता है। क्योंकि विचार पहला, फिर दृष्टि, फिर वृत्ति, फिर बोल, फिर कर्म। थॉट इज रूट कॉज, सारी बीमारियों के लिए, सारे दर्द के लिए, सारे दुख के लिए कारण कौन? मन। तो मन जीत जगत जीत कहा। जब उत्पत्ति होती वहां अगर आपने उसको कंट्रोल किया, बाकी के कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। उत्पत्ति कहां हो रही है? मन। तो ये बीज को पकड़ो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे सवेरे उठते ही घर में बच्चे, पोते, बहू, वाइफ, अपने युगल पति, कोई भी देखते ही ये कौन? मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे। अगर ये मेरे मन में सवेरे उठते, चैरिटी बिगन्स एट होम, पहले घर से शुरू करो। फिर बाहर रास्ते पर चलो, कोई भी दिखाई दिया, गरीब, श्रीमंत, प्रजा और कोई भी है, बिजनेस वाला है, खेती में काम करने वाला है, भीख मांगने वाला भी है, उसका अपना कर्म है। मुझे क्या करना है, मेरा दृष्टिकोण मुझे किस दृष्टि से देखना है, ये कौन है? खाना भी देंगे आप कितना दिन देंगे, किसी को कपड़े देंगे, किसी को और कुछ देंगे, कितना दिन देंगे आप? किसी को कुछ नहीं चाहिए, कोई गरीब गरीब नहीं है। सबसे पहले औरों के प्रति शुभ संकल्प चाहिए, और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ना धर्म ना ये कुछ भी नहीं। हर एक मनुष्य आत्मा को सवेरे उठते किसी पर नजर गई, इसमें कोई तकलीफ है किसी को? है तो बताओ भाई जी, ऐसे नहीं सोच सकते हम, ये नहीं हो सकता है। ऐसा है किसी को तकलीफ है तो बताओ, किसी को तकलीफ है तो हाथ उठाओ। है? कोई नहीं है, मंजूर? मैंने एक एक, अगर कोई तकलीफ है बाबा ये नहीं हो सकता है, कहना सहज, ऊपर बैठ के आप भाषण कर रहे हो, आप बता रहे हो, लेकिन ये संभव नहीं संसार में रहते हुए। करना तो आपको भी है, हम भी कर रहे, जो मैं कर रहा हूं वो बता रहा हूं, तो ये संभव नहीं तो बताओ, उसका भी दूसरी विधि है, और भी सहज विधि है। लेकिन नंबर वन पवित्रता और नंबर वन राजयोग क्या यहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? औरों के प्रति शुभ सोचो। इतना ही मैं छोड़ दूं तो शुभ क्या है वो पता नहीं चल रहा है, तो हवे में छोड़ दिया बात, तो उसको स्पष्ट किया, शुभ वो, शुभ आत्मा, और ये परमात्मा का संतान, और उनको देखते सिर्फ इतना ही नहीं, कहते दुआई दे दो। हां, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका, इसको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दो, देना न देना उनके ऊपर है, मेरा अधिकार सिर्फ रिक्वेस्ट करना। मेरा बाप पर अधिकार है, कहा मैं बाप को रिक्वेस्ट करो, वो जानता है कर्मों की गति, जानी जानन हार कहा, किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, वो उसका निर्णय है। जैसे मां के साथ बच्चा जाता है, मम्मी मेरा ये दोस्त है, इसको चॉकलेट दे दो, हां कहते हैं, देना न देना उसको पता है, बच्चों को अगर चॉकलेट दिया तो उनके मां बाप कहेंगे इनके दांत खराब होंगे, चॉकलेट नहीं देना चाहिए बच्चों को, वो जानते हैं मां बाप, बच्चों को हां कहेंगे। तो मां पिता को हमारा धर्म अधिकार कहां तक है, ओनली रिक्वेस्ट, वो करण करार वो करेगा कि किसी को देखते मन में अरे इनके कर्म देख लो, ये ऐसे दुख नहीं, हमारे साथ हमारा मां बाप है, तो रास्ते पर चलो कर्म करो, सवेरे घर में उठते परिवार के प्रति कैसे चंद, इसी का कहा तो ये गृहस्थ आश्रम आज है, कल गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा, अपने आप नहीं बनेगा, चमत्कार नहीं है यहां, विधि से सिद्धि है, पहला बीज फिर उसको पानी खाद डालो तो फल मिलता है। जो स्वर्ग चाहते, जो हम सुख चाहते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो अपने आप नहीं आएगा, ऊपर से नहीं आएगा, ये बीज बोने का समय है। तो ये सारे सृष्टि के अंदर चार भाग है, उसमें अंतिम एक सौ भाग है, इसको कहते संगम, पुरुषोत्तम मास कहते दुनिया में भी, शास्त्रों में भी, ये पुरुषोत्तम युग है, संगम है, बीच में जब भगवान स्वयं आता है, जैसे स्कूल में सारा साल पढ़ाया जाता है, फिर एक महीना छोड़ देते हैं, घर में पढ़ाई करो, कल परीक्षा है, पेपर देना है तैयारी के लिए, परीक्षा हुई तो आगे के लिए आप ट्रांसफर हो गए, वो आपके हाथ में है तकदीर कि क्या चाहते हो। मनुष्य चाहता है बिना किए हुए कुछ नहीं मिलेगा, सृष्टि का नियम है, ना भगवान ने ना साइंस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया अभी तक, बिना बोए हुए कुछ उग जाए, ऐसा किसी ने नियम बनाया, कुछ बीज डालो नहीं अपने आप उग जाए, नहीं, कहा हिम्मत का एक कदम रखो, एक बीज बोलो, ये धरती आज भी 50-100 गुना देंगी, लेकिन एक बीज बोना जरूरी है, हिम्मत का एक कदम रखना जरूरी है, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन राजयोग है। किसी पर नजर, कोई भी कितना भी खराब हो, आपके मन में उनके प्रति क्या आया, वो आवाज बाद में पहुंचता है, संकल्प पहले पहुंचता है, वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स, संकल्प इतनी तीव्र गति से पहुंचता है, तो अपने मन के ऊपर उससे जैसा संकल्प वैसे हमारे शरीर की जो रचना, शरीर का जो कर्म हो रहा है चलता है, वो भी उसी अनुसार चलता है। जैसे आप देख लो रसगुल्ला देख लो, देखते ही मुंह में पानी आता है, ऐसे भी किसी को शुभ विचार आया, ऐसे ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। अगर वही आपने मन में किसी को देखते गलत विचार किया, ऐसे एसिड तैयार होता है, बीमारी का कारण भी थॉट इज रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीजेस। सारी बीमारी आजकल कहां से आई, रूट कहां है, तो मन को पकड़िए, तब कहा मने चंचल है, मने घोड़ा है, मने तूफान है, जरूर, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक और एक शक्ति मिली, बुद्धि है, तीसरा नेत्र भगवान थे, तब मां बाप कहते माताएं मंदिर में जाके कहते भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो, नहीं कहा कौन भगवान देगा, बुद्धि है, उसको कैसे यूज करना है वो विधि बताता है। अपने जीवन में सवेरे से रात तक बुद्धि का यूज कैसे करो, जैसे साइंस ने हमको मोबाइल दिया, इस मोबाइल का यूज कहां करना चाहिए, सारा दिन नहीं, जहां जरूरत है समय है, साधना में बैठते हो, खाना खाने बैठते हो, स्नान कर रहे हो, और कुछ का उस समय नहीं, जहां बिजनेस जहां जरूरी है उस समय यूज करो। हर चीज अति के बाद अंत है, चीनी खराब नहीं है, एक उसका लिमिट, उसके बाद वही चीनी पॉइजन बन जाती है, साधन भी जो भी मिला उसका अति में जाता है तो वही दुख का बीमारी का कारण बन जाता है, कहां यूज करना है। जैसे भगवान ने हमको दो हाथ दिया है, मां गुरु हर एक बच्चों को सिखाती है, सबसे पहले गुरु, बच्चे दो हाथ आपके दोनों एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में, फिर भी ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए,
ये हाथ आपका होते हुए भी, आपका अधिकार होते हुए भी कहां यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, किसके लिए यूज करना चाहिए? तो ज्ञान, ज्ञान के विगतप कहते हैं सत्संग से सतगति होती है। अगर ज्ञान नहीं है, मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से खाता हूं, हां खा सकते हो आप, लेकिन अगर किसी मेहमानों के पास बैठ करके खाते हो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। किसको बोलेंगे? देखो मां बाप ने बच्चों को खाना खाना भी नहीं सिखाया, दोषी कौन? आज भी हम वही कहते हैं, भगवान ने ऐसी रचना क्यों रची? भगवान ने ऐसी रचना रची थी? भगवान ने रचनी रचना क्या उसी के लिए सत्युग, स्वर्ग रचा था। जब हम ऊपर से आए, भारत स्वर्ग देव भूमि थी, देवताएं थे, तब सनातन देवी देवता धर्म का, हम हिंदू नहीं थे पहले, देवी देवता थे। भगवान ने आके किसकी रचना की? भारत सोने की चिड़िया थी, कहां गई हो? आज भी भारत गरीब नहीं, आज भी सोना हीरा भारत में अथा है, लेकिन नियम है इस ब्रह्मांड के अंदर। क्या नियम है? नियम है वो भी कहानी आप जानते हैं, बताओ तो बहुत कुछ है। सत्यनारायण की कहानी जानते हो, पार्वती और शंकर ऊपर से जा रहे थे, पार्वती ने कहा देखो गरीब इनको कुछ दे दो, नहीं उसके तकदीर में नहीं है, आपने कुछ दिया ही नहीं, कैसे कहते हो? देखना चाहते हो? देख लो, उसके सामने एक सोने का वीट फेंका, देखा पत्थर समझ करके बाजू में करके चला गया। आज भी ब्रह्मांड के अंदर एक नियम है, पतित आत्मा इस सृष्टि की जो संपत्ति है उसका उपभोग नहीं कर सकती है। सृष्टि में आज भी संपत्ति है, पुण्य आत्मा ही इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग कर सकती है। इसलिए भगवान किसी को सोना हीरा कुछ नहीं देता है, पतित आत्मा को पावन करता है। पावन आत्मा है, यह चुंबक है, सारी सृष्टि की संपत्ति सुख सुविधा जो चाहे आपके चरणों में अपने आप आएंगी, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? दोनों चाहिए, एक हाथ से विष भी चाहते हैं, एक हाथ से अमृत भी चाहते हैं। ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों विरुद्ध है। तब कहा ये पांच विकारों का त्याग वहां भाग्य है, उसमें भी नंबर वन एक त्याग चाहिए, क्रोध। क्रोध से स्वयं के अंदर भी बीमारी, जिसके लिए करते उसको भी बीमारी, स्वयं भी अशांत और भी अशांत, और देखने वाले भी, वातावरण भी एक साथ। और ये मनुष्य के हाथ में है क्रोध को कंट्रोल करना। देख लो, अगर बच्चों को पिताजी कुछ बोलता है बच्चा चुप रहेगा, कोई काम करने वाला उसका मालिक बॉस कुछ बोलता है गुस्सा करता है चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। वही छोटे बच्चे को उनके इक्वल वाला कुछ बोलेगा तुरंत गुरगुर करेगा। मतलब पहले आपके पास पावर है ना कि नहीं है? नहीं तो वहां भी कुछ बोलता था आप, नहीं बड़े हैं, मां बाप है, गुरु है, बॉस है हमारा, उसके सामने चुप रहेगा। सहन करने की शक्ति है, कहां क्या करना कहां नहीं करना निर्णय शक्ति है, शक्ति नहीं ऐसा नहीं। अभी भी उसका यूज कहां करना है? हर एक कर्मों में करना है, क्यों? उसके कारण आज जो बीमारी का लेवल बढ़ रहा, अलग अलग नाम है, किसके कारण? तनाव कहां से आया, बीमारी कहां से आई? तो सबसे पहले एक चीज पर निर्णय, बाकी अपने आप आ जाएगा, एक साधे सब साधे। तो मैंने देखा जीवन में एक क्रोध पर मनुष्य के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, क्या कर सकता हूं मैं आज, वो नियंत्रण परसेंट एकदम भी नहीं। उसकी दवाई भी देता हूं, सिंपल दवाई भी है, और वो भी आप करके देखना। क्योंकि जैसे किसी को क्रोध आता है वो कहता है मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन समय परिस्थिति पर आ जाता है। कहां से आता है वो? तो दुनिया में ऐसा है, कोई किसी कारण बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं था, बेहोश हो गया, उसको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी संजीवनी बूटी है, हम भी प्रयोग करते हैं, आप भी प्रयोग करके देखना कि दवाई काम करती कि नहीं है। रोज एक महावाक्य भगवान का, उदाहरण मुझे आज क्रोध नहीं करना सारा दिन। मैंने सवेरे सुन लिया, कोई फायदा नहीं, इसको लिखकर अपने साथ जेब में रखो, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा। स्वस्थ शरीर को रखने के लिए क्या करते हो, एक दफा खाते नहीं हो, मिनिमम तीन दफा खिलाते हो, नाश्ता दिन में रात को मिनिमम। तो शरीर को, तब शरीर स्वस्थ है, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस चाहिए, स्पिरिचुअल फिटनेस चाहिए, आत्मा को भी भोजन चाहिए। तो क्या भोजन, उसका शुद्ध विचार, शुभ विचार कहां से लाओ, सवेरे एक नोट करके अपने पास रखना। जब भी समय, सारा दिन बिजी हो, करो कर्म, जब नाश्ता करने बैठते हो दो हाथ खाली है, यह हाथ इधर जा रहा है, यह हाथ आज मुझे क्या करना है, आज सारा दिन में किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है। पढ़ाया, याद दिलाया, ये मन के लिए भोजन है, रख दो, शुभ विचार, सकर्म करो। दिन में जब खाना आया, ढूंढने जाना नहीं, भूल गया, जेब में है, साथ रखो। एक और एक दफा पढ़ाओ, रात को एक दफा पढ़ाओ, कम से कम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, तो होश में रहेंगे, बेहोश नहीं होंगे। ज्ञानी आत्मा, समझदार होता व्यक्ति बेहोश नहीं होता है, बेहोश वो होता है जिसके पास उस समय मुझे याद ही नहीं था। इसलिए रामायण में आता है, एक बार ऐसी बात आ जाती है राम के समय पर, कुछ सब अस्त्र खत्म हो जाते हैं, तो क्या करो, तब आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ दो, सब मूर्छित होता है एक ही मिनट के अंदर। अगर ऐसे रोज एक 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 जमा करते हो शुभ विचार, कभी ऐसे एक दिन कुछ कारण से नहीं हुआ, अपने आप हमारे अंदर बुद्धि हो, याद दिलाएंगे आपको, इस समय ये काम करो, शुभ विचार जमा करो, कम से कम एक महीना नहीं, 10-15 दिन एक विचार, कल परसों मुझे जोर से नहीं बोलना है, रोप से नहीं बोलना है, शांति से बोलना है, एक एक रोज एक एक ले लो अपने आप के लिए। और ये दो हो गया, तीसरा एक जरूर चाहिए कि अपने आप को पढ़ाया नहीं, औरों को भी पढ़ाओ, जो भी कुछ कोई मिला आज उनको भी बता, देखो ऐसे बोलने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, औरों को भी ध्यान दे दो, जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसे एक 10 दिन आप करके देख लो, क्रोध आपको छोड़ के कहां जाता है देखना, कुछ प्रयोग करके देख लो। कि हर चीज की दवा चाहिए, अगर आप बैठ के को क्रोध चले जाओ, क्रोध चले जाओ, सिरदर्द चले जाओ, सिरदर्द चले जाओ, जाएगा, दवाई लेनी पड़ती है, विधि है, विधान है। तो यहां भी इस संस्कार को, आदत को मिटाने के लिए ये शुभ विचार, सवेरे दिन में शाम को मिनिमम, मैक्सिमम भी कर सकते हो, अपने आप को याद दिलाओ, आज मेरा लक्ष्य, सवेरे एक दफा सुना नहीं, दिन में भी चाहे रात को भी चाहे, सवेरे खाना खाया था, दिन में भूख लगती है, रात को भूख लगती है, तो शरीर को चाहे, आत्मा को भी चाहे। बेहोश जब आत्मा भूल जाती है, तब ये राग द्वेष शरीर के गुण यूज करने लग जाते हैं हम, तो होश चाहिए, होश में रखना है तो ये चीज चाहिए। और फिर कोई मिला उनको भी बताना, आज मेरा लक्ष्य है, आप भी इसको आचरण में लाओ, ये शुभ विचार दान भी करना सीखो, एक 10-15 दिन करके देख लो, देखना हमारी वृत्ति, हमारे अंदर जो अपने आप हो रहा है वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग के बिगैर पता नहीं चलता है, नहीं तो बहुत दवाई है, करके देखना पड़ता है। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है, ये सुनने से, इंफॉर्मेशन इज नॉट अथॉरिटी, अनुभव, मैंने किया है, मैंने इसके आचरण करके देखा, मुझे फायदा हुआ, ये अथॉरिटी है, तब का अनुभव की शक्ति चाहिए। तो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये एक है, दूसरा और एक जरूरी है, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, और 5 मिनट और एक चाहिए, तो भाई जी क्या ये दाग जो अंदर भरा हुआ है संस्कार कहते हैं, क्या ये मिट जाएगा? तब कहा, एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कभी भी जलता नहीं है, राख नहीं होती है, वही कागज वही सूर्य की किरणें। एक कॉन्वेक्स ग्लास होता है, एक ग्लास पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं, एक ही जगह पकड़ के रखो, एक ही मिनट के अंदर आग लग जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं है ये, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो यहां क्या हुआ, सूर्य की किरणें पहले पड़ती थी, फैल जाती थी, अब हमने सूर्य की किरणों को ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र किया। तो एकाग्रता से असंभव को भी एक घंटे का काम एक मिनट में कर सकते हो। एकाग्रता के अंदर यह शक्ति है, जो गीता में भी है, अर्जुन को कहा इधर देख के वहां बाण मारना है, एकाग्रता का उदाहरण है। लेकिन मैं कैसे इसको प्राप्त करूं, साधारण जीवन में रहते रोज कैसे करूं, सिंपल चीज है। तो इस एकाग्रता को कर्मेशु कौशलम कहा, हमारे हर कर्म के अंदर नीट क्लीननेस है, स्वच्छता चाहिए, हर एक चाहता है, काम एक्यूरेट होना चाहिए। कैसे करूं, बच्चों को हम कहते हैं बच्चे ध्यान से पढ़ो, तो ध्यान कहां मिलता है बता सकते हो कोई? प्लीज गिव अटेंशन, अटेंशन कहां मिलता है, क्या अटेंशन है वो? एकाग्र करो, क्या एकाग्र करो? तो ये वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है आपको, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग क्या है जो सिखाया है पहले, दोनों में अंतर है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में और एक जो साधना, एक एक घंटा नहीं, पांच दस मिनट सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का, चार से पांच के बीच में, संध्या का सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य को अर्घ्य देता है, तो वो भी साढ़े छह से साढ़े सात आठ बजे तक, उस समय पांच दस मिनट देखना, एक प्रयोग करके देखो, डॉक्टर दवाई देता है, वो सुनने से कुछ नहीं होगा, आप करके देख लो, अगर उसको प्राप्ति है तो सदा करो, नहीं तो छोड़ दो। प्रयोग करने में कोई तकलीफ नहीं, और आपको सारा दिन छोड़ो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहा, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं। तो शाम को और सवेरे जब बैठते हो, भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है, यह भौतिक हो गया। इस शरीर के अंदर साधना आत्मा के लिए करते हैं हम, शरीर के लिए नहीं। तो आत्मा की साधना आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना है, क्योंकि आत्मा की बीमारी मिटाता है क्या उसने, शरीर की नहीं। तो आत्मा समझना है तो कैसे, अभी भाई जी स्वामी जी मुझे दिखाई दे रहा है, स्वामी जी है, फिर भी मैं पूछता हूं, क्योंकि स्वामी जी कहता है मुझे समझो, मैं कैसे समझो, दिखाई दे रहा है। फिर स्वामी जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते हो? हां अब स्वामी जी कौन है मुझे समझ में आया। तो ऐसे ही मैं आत्मा एक शब्द सुना है नहीं, जब साधना के लिए बैठते हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं दुनिया, मेडिटेशन क्या है, एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस, अपने को जागृत करो, क्योंकि मैं माना हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में रहते हैं हम, शरीर का यूज कर रहे, करना भी चाहिए, क्योंकि शरीर में है, बहुत समय से आदत है, कम से कम साधना करते हैं शरीर को भूल कर, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं बी रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ, कैसे हो जाओ? तो वो विधि चाहे, बैठते ही आराम से आंखें खोल के बैठो, कैसे भी बैठो, जैसे आपको आसन यही चाहिए, वो शरीर का आसन अलग है, उसको योगा का, फिजिकल एक्सरसाइज विल गिव यू फिजिकल फिटनेस, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। बैठ करके साधना सवेरे शाम क्यों कर रहे हो, दवाई क्यों ले रहे हो, दर्द मिटाने के लिए, ये साधना क्यों कर रहे हो, अंदर संचित पाप है, कैसा पता चला मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर नहीं है, मैं पुण्य आत्मा हूं, डॉक्टर के पास जाओ मुझे कोई बीमारी नहीं, वो तुरंत दिखाता है एक्सरे निकाल के, शुगर कितना है, बीपी कितनी है, आर्टरीज कितनी ब्लॉक हुई है, तुरंत दिखाता है। यहां भी मुखड़ा देख ले प्राणी, जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आए हैं, दिन में ये भाई ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मैं अच्छा हूं, रात को जब आंखें बंद करके सोए हो, ये स्वप्न कहां से आए हैं? तब एक चीज याद है, ना भगवान चाहे, ना डॉक्टर चाहे, ना कुछ नहीं चाहे, एक शब्द भूलने के कारण ये सब करना पड़ रहा है। वो क्या, कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं एक एक सेकंड जो भी कुछ कर्म करता हूं, हर सेकंड मेरे अंदर संचित हो रहा है। उसको इंग्लिश में कहते हैं, फॉर ईच एक्शन देर इज अ रिएक्शन एंड देर इज नो एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं था इन्होंने चाय पिलाया, पिया किसने, पिलाने वाले बहुत है, पिया किसने, उसका असर मेरे ऊपर, जिसने पिया उसके ऊपर है। मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। एक प्राणी को दो रोटी दे दो, एक रोटी कल के लिए नहीं रखेगा। एक मनुष्य को 5 रुपया दे दो, 2 रुपया कल के लिए रखेगा। मनुष्य वो जो कर्मों की गति को जानता है, भविष्य को जानता है, जो भविष्य को नहीं सिर्फ वर्तमान देखता है, उसको प्राणी का मानवा मृगा वर्तमान देखता है। जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैं ऐसे बोलो ऐसे करो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका नाम है मनुष्य। देवता उसके आगे फिर तब कहते हैं कम से कम मनुष्य तो बनो, मानव धर्म मनुष्य तो बनो। कैसे बनो? प्राणी नहीं, सिर्फ वर्तमान। भूख लगी खाना चाहिए, क्रास कैसे भी खा लो, मुझे भूख लगी है। वो वर्तमान सोचता, उसके कर्मों की गति को नहीं सोचता है। तो मनुष्य तब यहां चाहिए कि कर्म करते समय मेरे कर्म सब रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो स्वप्नों के द्वारा दिखाई देता है। फिर मन में विचार के रूप में आता है। मन चंचल नहीं, मन खराब नहीं, मन अशांत नहीं है। यह शांति कहां से आई? मैंने किए हुए कर्म है, आवाज आता है। फिर बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा काला गोरा किसने किया? चाहे भाई सही रास्ते से जा रहा हूं, ये गलत रास्ते से आकर के एक्सीडेंट किया, मेरा पाँव टूट गया, ये मुझे क्यों, मैंने कुछ नहीं किया। तब का कर्म अंदर है। अगर आप में से कोई कहते हैं आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। उसको आग में भी डालो, आग भी जला नहीं सकते हैं। जब सीता रावण के पास थी तब राम ने कैसे लिया? अग्नि परीक्षा किया, अग्नि में डाला, अग्नि ने जलाया नहीं। अगर कुछ कर्म है तो ये प्रकृति, ये शक्तियां है, प्रकृति है, ये हमारी सेवा के लिए है। अगर गलत कुछ करते हो ये प्रकृति भी सजा देती है। अनावृष्टि, अकाले मृत्यु, सब क्यों हो रहा है? ये कर्मों का फल। कैसे कहते हो मेरे कर्म? मुखड़ा देख ले प्राणी, किसी न किसी रूप से बाहर आएगा। इसको मिटाना चाहते हो तब कहा कर्म बंधनों से मुक्त। भगवान कौन? ही इज ए प्यूरिफायर, ही इज ए लिबरेटर। वो कौन? पतित आत्मा को पावर करता है। पाप कटेश्वर कहा, वो चाहिए तो उसकी साधना कौन सी दवाई है? कुछ भी नहीं है। आराम से सवेरे बैठो, कहीं भी कैसे भी अपने आप से बात करो, टॉक टू यू, बी इंट्रोस्पेक्शन कहता है। अपने आप से पूछो मैं कौन, कौन जवाब देगा? बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, बुद्धि को याद है। हां उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूं, ईश्वर का संतान हूं। एक अंगुली जुट गई, मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया। दूसरा, मेरा रूप ये आज है कल नहीं, मेरा रूप कैसा है? जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसा सफेद चमकता हुआ सितारा इस मस्तक के बीच में बैठा हूं। तब मंदिर में जाते तिलक यहां लगाते हैं, आत्मा यहां है, तो वो स्मृति चाहे मैं सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। तीसरा, मेरे गुण दैवी गुण और आसुरी गुण है। दैवी गुण कौन से? 7 गुण हैं। एक एक गुण पूछ लो, जानते हैं हम दूसरों का किताब पढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर जो भरा हुआ उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो साधना है अपने आप को ढूंढो, रिसर्च का आप हो उसको ढूंढो। मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण कौन से? पूछ लो रोज सवेरे उठकर, जागृत करो, मेरे ये गुण थे, मेरे ये गुण थे, याद दिलाओ। मैं क्या करता हूं? इस भ्रुकुटी में बैठकर देखना है, इन आंखों से देखता हूं, जैसे ड्राइवर और कार। इस शरीर को मैं चलाता हूं, ये शरीर अलग, कैसे चलाना, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए मेरे हाथ में है। नहीं मुझे नहीं चाहता हूं, मुझे दिखाई दिया, मेरा कंट्रोल नहीं है। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के पास ब्रेक है, कहां मोड़ना चाहिए, कहां ब्रेक लेना चाहिए, गाड़ी दे दिया क्या करेगा, तो कैसे चलाना है उसका भी ज्ञान चाहिए। तो मैं इस ब्रकुटी में बैठकर इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। पांचवा, मैं कहां से आया। ये पांच प्रश्न पूछ लिए, मन और बुद्धि एक हो गई, एकाग्र हो गई। चाहे पढ़ाई में लगाओ, सारी पढ़ाई ग्रहण हो जाएंगी। बिजनेस में लगाओ, बिजनेस नीट क्लीन एकाग्रता से, कर्मों में कुशलता परफेक्शन। भगवान पर लगाओ, उसकी शक्ति को ग्रहण करते हो, तब कहते ध्यान लगाओ। ध्यान वहां दे दो, इधर उधर नहीं देख, ध्यान लगाना नहीं। जब बैठते हो, कौन गया, कौन आया, और कुछ है, ध्यान इधर उधर है। अभी माता है इधर बैठे, कोई बैठे इधर, अरे बिजनेस वाला का इधर बैठे बैठे भी फोन करते रहेंगे। ध्यान में बैठे हो, कुछ सुनने के लिए आए हो। हां बिजनेस करना है, बिजनेस का समय अलग है, फोन करने का समय अलग है। तो इस समय कुछ पढ़ाई करने आए हो, उस समय बैठ के, उस समय एक साथ, टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, एक साथ नहीं होते, एक साथ। तो रोज आप 10-15 दिन, ज्यादा से ज्यादा एक महीना ये करके देख लो, देखना बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा। क्योंकि ये मन और बुद्धि, ये दोनों आप पावर हाउस से जोड़ रहे हो, ऊपर है, तो वो शक्ति ग्रहण करते हो। जैसे सूर्य बाहर आया हुआ है, आप अंदर बैठे हो, सूर्य की किरणें मिलेंगी आपको नहीं, सूर्य आया हुआ है। अगर सूर्य की किरणें चाहिए, शरीर को लेके बाहर जाइए, 5 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, आप चाहो या नहीं चाहो पसीना निकालता है। ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, कोटि सूर्य समप्रभ कहा, वो भगवान आत्मा का पसीना निकालता है। लेकिन आत्मा मकान के अंदर है, उसको जागृत करो। जागृत करने की विधि बताया, बैठते ही मैं कौन, नहीं तो मन किसी का भी स्थिर नहीं है, अपने आप नहीं होगा। ये बुद्धि कुछ याद नहीं आना चाहिए, भगवान का आना चाहिए, संभव नहीं, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो बैठ, इसलिए मन और बुद्धि को आप ज्ञान के आधार से चलाओ, नहीं वो अपने आप चलेंगे। एक मिनट इधर का आवाज विचार आएगा, एक मिनट उधर का आएगा, एक और किधर आएगा, तो ये बंदर दौड़ते रहेंगे अंदर, तब कहेंगे अशांति है, ध्यान ही नहीं लगता है। ध्यान अपने आप लगने वाला नहीं है, लगाना है। अगर ऐसे आप एक थोड़ा 10-15 एक महीना कम से कम करके देख लो, इसमें आपका ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट, नहीं कुछ प्राप्ति नहीं, छोड़ दो। बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। आध्यात्मिक जीवन दबाव से, प्रेशर से नहीं, स्व इच्छा से चलने का रास्ता है। मंजूर, समझ में आया। जब भी कल सवेरे भी आके ध्यान में बैठेंगे, ऐसे ना ऐसे बैठो तो नींद आएंगी जरूर। मन खाली हो गया उसको कहते नींद जरूर। तभी रात को अगर आपको किसी को चित्र से गुस्सा किया किसने, जाके सो जाओ, नींद आएगी कि चल रहा है चक्कर, है ना। यहां भी जब बैठते हो, एक चक्कर नहीं चलाना, दो चक्कर है, मन और बुद्धि दोनों चक्कर चलाओ तो नींद नहीं आएंगी। आराम से बैठ करके ध्यान लगेगा। अगर कुछ अगर ये करते हो, अंदर पाप मिटाना चाहते हो, तब कहा चाहे लाख करो चतुराई लेप मिटे ना रे भाई, ये अपने आप मिटने वाला नहीं। तब पतित पावन, तब शास्त्रों में भी कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति, बहुत धर्म की भारत की ग्लानि होती है, भगवान के बच्चे दुखी होते हैं, वो स्वयं आता है, आकर के सुख प्राप्त करने की विधि बताता है। इसी का नाम राजयोग है। ओम शांति।